अध्याय 15 फसल बटोरना व्याकुल करने वाली समस्या। कई वर्षों से व्याकुल करने वाला प्रश्न हमारे सामने है, हम किस तरह इतना धन प्राप्त कर सकें जो प्रचार व सहायता कार्य को जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रारंभ किया कि इसे करने के लिए पर्याप्त हो। हम सुसमाचार के और प्रचार सहायता कार्य दोनों को देश व विदेश में उसकी आवश्यकता को प्रस्तुत करते हैं। ये कुछ संकेत हैं प्राप्त धनराशि का सकारात्मक प्रकाशन। मिलकर अपील करते हैं कि वो काम जो अभी तक होना बाकी है उसे शीघ्रता से करें। एक सफल योजना। मिशन के लिए उन अविश्वासियों तक पहुंचने के लिए बनाई गई योजनाओं में से एक नई योजना फसल बटोरने का अभियान है। पिछले कुछ सालों में कई स्थानों पर इस योजना को सफलता मिली है, कई लोग आशीषित हुए और मिशन के खजाने में तेजी से वृद्धि हुई है। जैसे कि कुछ जो हमारे धर्म को मानने वाले नहीं हैं, उन्हें भी उन मूर्ति पूजक देशों में तीसरे स्वर्गदूत के संदेश को बताया गया, उनकी सहानुभूति जागी और उनमें से कुछ लोगों ने सच्चाई को और अधिक जानने की इच्छा जाहिर की, जिसकी सामर्थ्य से उनके हृदय और जीवन बदल सकते हैं। सभी वर्ग के स्त्री पुरुष इस अभियान में शामिल हुए और परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या अविश्वासियों से उपहार प्राप्त करना उचित है। ऐसों को स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए, हमारे इस जगत का सही मालिक कौन है? इस जमीन सोने व चांदी के खजाने का मालिक कौन है? प्रभु के जगत में हर वस्तु अपार है और उसने इन वस्तुओं को हर मानव के हाथ में कर दिया है, चाहे वे आज्ञाकारी हों या न हों। वो इन सांसारिक व्यक्तियों के हृदयों को बदलने के लिए तैयार है, चाहे मूर्ति पूजक ही क्यों न हो। वे अपनी भरपूर संपत्ति इस काम को आगे बढ़ाने में दे, और वो ऐसा करेंगे भी, और तभी उसके लोग उनके पास बुद्धिमानी से पहुंचने का प्रयास करेंगे, उन्हें उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए, जो कि उनका सुअवसर है कि वे ऐसा करें। यदि परमेश्वर के काम की जरूरतें सही तरीके से सामने रखी जाती कि ऐसे लोग जिनके पास सभी साधन उपलब्ध है काफी कुछ कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का काम रुके नहीं और वर्तमान सत्य सबको बताया जाए। परमेश्वर के लोगों ने अनेक अवसर हाथों से गवा दिए जिनसे उन्हें काफी फायदा मिल सकता था, यदि उन्होंने संसार का प्रतिनिधित्व करने को स्वयं अकेले का काम समझकर नहीं किया होता। परमेश्वर आज भी राजाओं और प्रधानों के हृदयों में उसके लोगों के प्रति काम करता है। जो उसके लिए परिश्रम करते हैं, उनके काम के लिए जिस प्रकार की मदद की जरूरत होती है, वो उन्हें उत्साहित करना है कि वे खुले हाथ से मदद दे, ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ता रहे। वे साधन जिनके द्वारा मदद की जाती है, वे उन अंधकार में पाए जाने वाले अनेक देशों के लोगों के लिए सच्चाई की रोशनी ला सकते हैं और ज्योति का रास्ता बना सकते हैं। हो सकता है ये लोग जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, इन्हें प्रभु के काम के प्रति कोई लगाव सहानुभूति न हो, प्रभु यीशु में विश्वास न हो, उसके वचन के बारे में कुछ ज्ञान न हो, फिर भी इनके द्वारा दिए गए ये उपहार इन कारणों से लौटाए नहीं जा सकते। प्रभु ने अपना सामान विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों को सौंपा है, वो सब उसको लौटाया जा सकता है, किंतु उसके अपनों के लिए काम करने के बाद जो इस पाप में गिरे जगत के लिए किया जाना है। जब तक हम इस जगत में हैं, जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके बच्चों के मन में काम करता है, तब तक हम उसका सहयोग उसकी सहायता पाकर उसे लोगों में बांटते रहेंगे। हमें जगत को सत्य की रोशनी प्रदान करना है जो वचन में प्रकाशित की गई है, और जगत से वो प्राप्त करना है जिसे परमेश्वर स्वयं उन्हें देता है, ताकि उसका काम किया जा सके। यद्यपि आज संसार का सारा धन और संपत्ति दुष्ट लोगों के पास है जो परमेश्वर का है, ये पृथ्वी और उसकी सब वस्तुएं उसी की हैं, सोना मेरा है और चांदी भी मेरी है, सेनाओं का परमेश्वर कहता है, जंगल का हर एक प्राणी तथा मैदानों के पर्वतों के सारे जानवर भी मेरे हैं, मैं पर्वतों के हर एक पक्षी को जानता हूं और मैदान का हर प्राणी मेरा है। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे न कहता, क्योंकि संपूर्ण जगत मेरा है और उसकी हर वस्तु मेरी है। ये तो हर एक मसीही के लिए बहुत ही ज्यादा आनंद की बात होना चाहिए कि ये उनके मौके का फायदा उठाते और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए काम कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को उपदेश। उन सभी को जो इस विशेष प्रचार सहायता कार्य को अपने हाथ में लेने वाले हैं और उस कागज को जो इस फसल बटोरने का अभियान कार्य को करने के लिए तैयार किया गया है। उनसे मैं यह कहूंगा, मेहनत व परिश्रम करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, अपने मसीही अनुभवों को इस काम में शामिल करते जाओ। वे जिनमें विशेष उत्साह व जोश है, वे उच्च एवं निम्न स्तर के लोगों को जो अविश्वासी हैं अपनी योग्यता से सिखाएं। बड़ी तन्मयता व लगन से नाश होने वाली आत्माओं को खोजो। प्रभु यीशु की उस तीव्र इच्छा को जो उसे फिर से अपने झुंड के पास ले आती है, उसके बारे में सोचो। वो लोग जो प्रभु से अलग हो गए हैं, वो चाहता है कि लौट आए। आत्मा को बचाओ, क्योंकि उन्हें अपना लेखा देना है। आपके कलीसिया या आस पड़ोस में जहां प्रचार कार्य हो रहा है, वहां जाकर तुम भी अपनी साफ व स्वच्छ रोशनी लोगों के बीच चमका सकते हो, ताकि न्याय के समय कोई भी व्यक्ति खड़े होकर तुमसे ये न कहें कि तुमने मुझे इस सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने मेरी आत्मा के बचाए जाने के लिए चिंता क्यों नहीं की। तो आइए हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को बड़ी तत्परता से लोगों में बांटें, जो ऐसे ही अविश्वासी लोगों को विश्वास करने के लिए तैयार की गई है। हम एक अविश्वासी को ये पुस्तकें सौंप दें, ताकि प्रत्येक सच्चाई को जान सकें। आइए हम अपने आप को इस उद्घोषणा करने के लिए तैयार करें। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, पर्वतों व टीलों को समतल करो, प्रभु के लिए मार्ग चौड़ा करो। सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक, किसी भी काम को शुरू करने के पूर्व, चाहे वह लोगों तक वर्तमान सच्चाई को पहुंचाने का काम हो और उस सच्चाई से जुड़ी अद्भुत आशीषों जो इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं बताने का काम हो, पहले हमें अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को समर्पित करने की जरूरत है, जिसे हम महिमा देना चाहते हैं, जिसका नाम ऊंचा उठाना चाहते हैं। सबसे पहले हम एकचित्त होकर प्रभु से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जिन्हें हम मिलना चाहते हैं। एक जीवित उदाहरण के बतौर उन सबको भी एक एक कर प्रभु के सामने लाएं। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। वो मनुष्यों के विचार और उनके उद्देश्य जानता है। वो हमें बड़ी आसानी से पिला सकता है, और उसका आत्मा जो आग के समान है, वो कठोर हृदय को नम्र बना देता है। कैसे वो आत्मा को अपने प्रेम और उदारता से भर देता है, और कैसे वो हमें अपनी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से पूर्ण करता है, और हमें यहां वहां जाकर आत्माओं के लिए परिश्रम करने योग्य बनाता है। परमेश्वर का काम काफी दूर तक लोगों का प्रोत्साहन प्राप्त करेगा, जितना कि आज प्राप्त कर रहा है। यदि हम उन मनुष्यों के पास बुद्धिमानी से पहुंचते, उन्हें प्रभु के काम से परिचित करवाते, समझाते और काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक मौका प्रदान करते, यह कहकर के ऐसा न करना हमारा सौभाग्य है। यदि परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम एक बुद्धिमानी और सही काम हाथ में लेते हैं, तो परमेश्वर भरा हाथ हमारे हर प्रयास को आशीषित करेगा। प्रभु के काम को करने वाला हर व्यक्ति इस काम को बुद्धिमानी से सोच विचार कर पूर्व योजना बनाकर करे, तो इसके बेहतर परिणाम पा सकते हैं। कमियों और पिछड़ेपन के कारण हम उतने सफल नहीं हो पाते जितने हमें होना तैयार होता है। जो भी काम का जो हम कर सकते हैं उसे करें। आंतरिक और बाहरी प्रचार कार्य। घरेलू प्रचार हर तरह से आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति स्वतंत्र स्वयं का इनकार करने वाला तथा बलिदान देने वाली आत्मा से कार्य करेगा, तो बाहरी प्रचार कार्य भी संपन्न होगा, क्योंकि घरेलू काम की सफलता पाना मुख्यतः परमेश्वर की निगरानी में निर्भर करता है कि सुसमाचार प्रचार कार्य का कितना अधिक प्रभाव दूर दराज के देशों पर पड़ा है। ये सब सक्रिय रूप से काम करने तथा प्रभु के काम को करने के लिए जरूरी वस्तुओं की पूर्ति पर भी निर्भर है कि हम हमारी आत्माओं को सभी सामर्थ्य के स्रोत के करीब लाते हैं। एक अमेरिकन व्यापारी ने जो एक वफादार मसीही था, उसने अपने एक सहायक कार्यकर्ता से बात करते हुए कहा कि वो दिन के 24 घंटे प्रभु यीशु के लिए काम करता है। मेरे सारे व्यापार संबंधों में मैं अपने प्रभु का उदाहरण देता हूं। जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं दूसरों को उसके लिए जीतने का प्रयास करता हूं। पूरा दिन मैं प्रभु के लिए देता हूं। जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं दूसरों को उसके लिए जीतने का प्रयास करता हूं। पूरा दिन मैं प्रभु के लिए काम करता हूं। और रात में जब मैं सोता हूं, तो चीन में एक व्यक्ति है जो उसके लिए काम करता है। अपने वक्तव्य में उसने जोड़ा, मैंने अपनी जवानी में ही अन्य जाति के लिए मिशनरी होने का निर्णय लिया था, किंतु पिता की मृत्यु होने पर मुझे ये व्यापार अपने हाथों में लेना पड़ा ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। अब मैं स्वयं न जाकर एक मिशनरी की सहायता करता हूं। चीन के क्लांगक्लान शहर में मेरा कार्यकर्ता ठहरा हुआ है, और इस प्रकार जब मैं सो रहा होता हूं तब अपने सहायक के द्वारा प्रभु का काम करता रहता हूं। क्या ऐसे सातवें दिन का पालन करने वाले नहीं हो सकते जो इस व्यक्ति के समान काम करें? सेवकों को कलीसिया में प्रचार कार्य करने के बदले, जो पहले से ही सच्चाई जानते हैं, कलीसिया के लोग ऐसे मजदूरों को कहें, जाओ उन आत्माओं को बचाने के लिए काम करो जो नाश होने वाली हैं, अंधकार में हैं। हम स्वयं कलीसिया की सेवाएं पूरी कर सकते हैं। हम सभाएं रखेंगे और प्रभु येशु की संगति में आत्मिक जीवन जिएंगे। हमारे आसपास के लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं और उपहार उन मजदूरों के द्वारा जरूरतमंदों और अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए भेजेंगे। एक योग्य उदाहरण, वो गरीब विधवा जिसने अपनी दो दमड़ियां प्रभु के खजाने में डाली थीं, उस दान के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उसके इस सबसे बड़े बलिदान ने हजारों लोगों के हृदयों को प्रभावित किया, हर एक देश और हर एक युग में। वो प्रभु के खाते में धनी व गरीब, ऊंचे व नीचे स्तर के लोगों द्वारा लाया जाता है। ये दान मिशन कार्य जैसे अस्पताल बनाना, भूखों को खिलाना, गरीबों को कपड़े पहनाना, बीमारों को चंगा करना और उन्हें सुसमाचार प्रचार करना आदि में मदद करता है। लोगों की बड़ी भीड़ उसके निस्वार्थ कार्य से आशीषित हुई है। नहेम्या के जीवन से शिक्षा। कई वर्ष बीत गए, मैंने अपने प्रचार कार्य को प्रस्तुत करने की योजना और उसकी उन्नति के बारे में अपने मित्रों और पड़ोसियों से कहा था, और उसमें नहेम्या के उदाहरण का जिक्र भी किया था। और अब मैं अपने भाइयों और बहनों से ये विनती करता हूं कि इस प्रार्थना करने वाले विश्वासी और खरा न्याय करने वाले व्यक्ति का अनुभव फिर से बाइबल में अध्ययन करें। उसने अपने मित्र राजा अर्थक्षेत्र से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद मांगने से डरा नहीं। स्वेच्छा से प्रार्थना करना, अर्थात उनसे मांगना जो खुले कर दें। प्रार्थना करने वालों को कार्य करने वाला भी होना चाहिए। जो काम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार है उनके लिए रास्ते खुले होंगे तथा काम करने के साधन भी प्राप्त होंगे। नहेम्या कभी भी अनिश्चितता पर निर्भर नहीं था। जिन साधनों की उसे कभी कभी थी, इसमें उन्हें उन लोगों से प्राप्त किया जो उसे भरपूरी से दे सकते थे। कार्य पूर्ण करने के लिए साहस सामर्थ्य के द्वारा आया।
नहेम्या और अर्थक्षेत्र आमने सामने खड़े थे, जबकि एक सबसे निम्न जाति के कुचले हुए लोगों में से एक सेवक था और दूसरा उस समय के जगत के महान साम्राज्य का एक छत्र राजा था। किंतु फिर भी एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न होते हुए, पद व गरिमा में अंतर होने के साथ दोनों की नैतिकता एक दूसरे से भिन्न थी। नहेम्या ने राजाओं के राजा के निमंत्रण को स्वीकार किया, उसे मेरी सामर्थ्य को ले लेने दो ताकि वो मेरे साथ शांति स्थापित कर सके। उसने अपनी शांत विनती कई हफ्तों से पिता से मांग रहा था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना पर गौर करें, और अब ये सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी कि अब उसके पास एक सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी मित्र है जो उसके बदले कार्य करेगा। इस प्रभु के सेवक ने राजा को अपनी इच्छा जाहिर की कि वो उसके सामने से कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, और साथ ही उसे ये अधिकार दिया जाए कि यरूशलेम की बिगड़ी दशा को सुधारे और उसे फिर से एक ताकतवर, सामर्थी नगर बना दे। और इसी विनती पर इस यहूदी शहर का और यहूदा का महत्वपूर्ण परिणाम आधारित था। और नहेम्या आगे कहता है, राजा ने मेरी बात मानी क्योंकि मुझ पर मेरे परमेश्वर का आशीषमय हाथ था, आधिकारिक समर्थन प्राप्त किया। जैसे नहेम्या की विनती, राजा ने सहर्ष स्वीकार की। उसे प्रोत्साहन मिला था कि वो राजा से एक सहायक की जरूरत की मांग कर सका जो उसे अपनी योजना को पूरा करने में जरूरी था। अपने उस कार्य को प्रतिष्ठा और अधिकार दिलाने तथा यात्रा के दौरान सुरक्षित रहने के लिए उसने सेना का सहारा प्राप्त किया। उसने फरात नदी के आगे तक के संभागों के शासकों के लिए शाही पत्र प्राप्त किए
ताकि रास्ते में आने वाले प्रांतों के शासक उन्हें यहूदा तक जाने से न रोके। उसने लबानोन के पर्वतों की देखरेख करने वाले राजा द्वारा ठहराए गए संरक्षकों के लिए भी पत्र प्राप्त किए। उसे निर्देश करते हुए कि वो अच्छी से अच्छी लकड़ी तैयार करे, जो यरूशलेम की दीवार और जो इमारत उसने बनाने के लिए पहल की है उसमें इस्तेमाल हो सके। अतः इस काम के करने में शिकायत का कोई मौका किसी को न मिले कि उसने काम को बढ़ा चढ़ा के बताया है। नहमिया सावधान था इन सब अधिकारों और अवसरों के लिए, साथ ही अपने काम को उसने सबके सामने सफाई से प्रकट किया था। शाही पत्र जो नहमिया ने अपनी यात्रा के दौरान उन मार्गों वाले शासकों के लिए प्राप्त उचित सहायता के लिए भी काम आए। अतः किसी शत्रु की हिम्मत नहीं हुई कि इस अधिकारी को, जो फारस के राजा की ताकत से घिरा हुआ और मार्ग के प्रांत के शासकों के द्वारा उचित सम्मान प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा। नहमिया की यात्रा सुरक्षित एवं समृद्धिपूर्ण थी। नहमिया का यरूशलेम में प्रवेश, जो कि सेना के संरक्षकों से घिरा हुआ था, ये दिखा रहा था कि वो किसी विशेष उद्देश्य से आया है और इस कारण इज़राइल का शत्रु ईर्ष्या, जलन व घृणा से भर गया। ये मूर्ति पूजक जनजाति यरूशलेम पास ठही गए, जो पहले यहूदियों के प्रति शत्रुता बनाए हुए थे। उनको बहुत सी बुराइयां, अपमान और आघात पहुंचा चुके थे। इन बुरे कामों में इन जनजाति के कुछ मुखिया आगे थे, हरमाइट का सनबालाट। अम्मानी न किसी तरह से रोकने, उसकी योजना में विघ्न डालने का हर संभव प्रयास करते रहे। उन्होंने पूरे प्रयास किए कि उनके काम करने वालों के बीच अविश्वास, संदेह आदि डालकर उनके बीच में मतभेद डाल दे कि वे इस काम में सफल न हों। उन्होंने भवन बनाने वालों का मजाक भी बनाया और उनकी ये योजना असंभव है और बुरी तरह से असफल होने वाली है, ऐसा कहकर उन्हें हतोत्साहित भी किया। किंतु उस दीवार के बनाने वाले उनके पीछे पड़ा था। शत्रु के जासूसों ने उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए गलत समाचार प्रसारित करने लगे, झूठी खबर भेजने लगे। नहमिया को षड्यंत्र में फंसाने के लिए कई प्रकार के जाल बुने, और ये झूठ बोलने व गढ़ने वाले यहूदी इस काम को किसी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार भी हो गए। शत्रु के गुप्तचर मित्र भाव दर्शाते हुए भवन निर्माताओं से मिल गए, योजना में परिवर्तन करने की सलाह देने लगे, अनेक तरह से कर्मचारियों का ध्यान भटकाने के तरीके खोजने लगे, उनमें असमंजस और मुसीबतें पैदा करने लगे और एक दूसरे के बीच शक, संदेह और धोखा जैसा वातावरण बनाने लगे। इन्हीं रुकावटों का अगवे आज भी सामना करते हैं। नहमिया का यही अनुभव प्रभु के लोगों के इतिहास में आज भी दोहराया जा रहा है। जो आज भी सच्चाई के प्रचार में मेहनत करते हैं, वे इसी परिस्थिति का सामना करेंगे। वे इस काम को शैतान के गुस्से को जगाए बिना पूरा नहीं कर सकें। यद्यपि उन्हें परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए बुलाया है, उनका काम परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, वे बिना उपहास व ठट्ठा किए नहीं रह सकते। वे केवल स्वप्न देखने वाले, दगाबाज, चालबाज, पाखंडी, छल करने वाले कोई भी हों, संसार में ये सब उनके शत्रु होने के उद्देश्य है। सबसे पवित्र वस्तुओं को विधर्मियों के सामने उनका मजाक उड़ाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ अंश में व्यंग, कम दिमाग, जिसके साथ ईर्ष्या, जलन, अधार्मिकता और घृणा काफी है। उस अपवित्र तिरस्कार करने वाले को खुशी से, प्रसन्नता से झूम उठने के लिए, और ये सब के सब हठी, अहंकारी ठिठोलिए एक दूसरे की प्रतिभा को बढ़ाते और ईश्वर की निंदा करने के काम में इन सब बातों से परिचित हो गए जो परमेश्वर के प्रति वफादार है। ये तो शैतान की योजना है कि लोगों को उस काम से बेदखल कर दे जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है। निराश करने वाली ताकतों से जूझना। किसी भी तरह नहमिया ने अपनी योजना के तहत दीवार बनाने का कार्य पूर्ण किया। वह कहता है, शासकों को ये पता नहीं मैं कहां गया और मैंने क्या किया। न ही मैंने यहूदियों को, याजकों को, प्रधानों को, शासकों को और न बाकी लोगों को बताया जिन्होंने काम किया था। इस कष्टदायक पड़ताल में उसने किसी भी मित्र या शत्रु का ध्यान इसी ओर आकर्षित करने की इच्छा नहीं की, जिससे किसी प्रकार की उत्तेजना फैलती खबर भेजी जाती जो शायद उसे इस काम को करने में बाधा बनती या उसे असफल करती। नहिम्या ने अपना बाकी समय प्रार्थना करने में बिताया। सुबह जरूर एक अथक प्रयास होना चाहिए था जो उसके निराश व हताश और विभाजित लोगों को उत्साहित करता और एक करता। यद्यपि नहिम्या को एक शाही काम सौंपा गया था जिसमें उसे वहां के रहवासियों के सहयोग की आवश्यकता थी कि वो शहर पनाह को फिर से बना पाता, उसने केवल अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहकर इस काम को करना नहीं चुना, बल्कि उसने स्वयं उनका भरोसा व सहानुभूति प्राप्त की। ये अच्छी तरह जानते हुए कि हृदयों के मिलने के साथ सबका हाथ भी इस काम की सफलता के लिए आवश्यक था जो करने को उसने हाथ में लिया था। जब उसने लोगों को अगले दिन बुलाया, उसने ऐसे मुद्दे सामने रखे जिनसे उनका जोश जाग उठे और साथ ही वो सब जो बिखर गए थे एकजुट हो जाएं, और सारी बातों को पूरी तरह से सामने रखें, समझे, ये बताते हुए कि वह अपना काम समाप्त कर सका, क्योंकि उसके पास फारस के राजा के साथ इज़राइल का परमेश्वर भी था। नहिम्या सीधे तौर से लोगों से पूछता है कि क्या वे इस प्रिय सुअवसर का लाभ उठाना चाहेंगे, उसके साथ उठेंगे, शहर पनाह बनाएंगे। ये विनती हर एक के हृदय में उतर गई, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें कायल किया, वे डर के मारे लज्जित भी हुए, और फिर सब एक साथ पुकार उठे, आओ चले और शहर पनाह निर्माण करें। नहिम्या की पवित्र शक्ति और ऊंची आशा लोगों तक पहुंचाई गई। जैसे उन्हें आत्मा पाया, एक ही बार में वे अपने अगुवे के नैतिक स्तर तक पहुंच गए। हर एक अपने स्थान पर एक नहिम्या था, और हर एक ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरों को ताकत प्रदान की। इज़राइल के याजकों द्वारा प्रथम कदम। नहिम्या की जोश भरी आत्मा और कर्तव्य परायणता का प्रथम प्रभाव पाने वाले इज़राइल के याजक थे। ये लोग अपने पद और प्रभाव के द्वारा काम को या तो आगे बढ़ा सकते या फिर पीछे कर सकते थे। प्रारंभ में ही इनके द्वारा दिया गया सहयोग काम की सफलता में कोई कम योगदान नहीं था। इस प्रकार हर प्रकार के पवित्र कार्य में इनका सहयोग होना चाहिए। कलीसिया में जिनके पास ऊंचे पद, प्रभाव व जिम्मेदारियां होती है, उन्हें इन कार्यों में सबसे आगे होना चाहिए। यदि ये काम में रुचि नहीं दिखाएंगे तो अन्य अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, किंतु उनका जोश अनेकों को जगाने का काम करेगा। जब उनकी ज्योति प्रकाशमान होती है, तब उसकी लौ से अनेक मशाले रोशन हो उठती है। नहिम्या एक आयोजक के रूप में।
सामान्य रूप से लोगों को एक हृदय और एक आत्मा देश प्रेम के प्रति भावना और खुशहाल कार्यप्रणाली के लिए बनाया गया है। जो व्यक्ति योग्य और प्रभावशाली संस्थापक है, वो विभिन्न प्रकार के नागरिकों को समूह में रखकर स्वयं को उस दीवार के विशेष हिस्से को बनाने के काम में अगुवाई कर जिम्मेदारी निभा सकता है। और ये दृश्य परमेश्वर और स्वर्गदूतों के लिए क्या ही सुहावन था, जब उन्होंने देखा कि सभी लोग मिलकर यरूशलेम की ध्वस्त दीवार को बना रहे थे, और उन मेहनतकशों के द्वारा चलाए जा रहे औजारों की आवाज क्या ही मनोहर थी, जो सुबह से लेकर रात होने तक सुनाई देती थी, जब तक आकाश में तारे दिखाई नहीं देते। सच्चे अगुवे का कार्य करने का तरीका। नहिम्या का जोश और उसकी ताकत कम नहीं हुई, और अब काम शुरू हो चुका है। उसने अपने हाथ बांध नहीं लिए, ये सोचकर कि उस बोझ को वो गिरने दें। बिना थके उसने काम के पूरा होने तक सावधानी से देखा, कामगारों को निर्देश दिया, हर कमी का ध्यान रखते हुए हर प्रकार की दुर्घटना का सावधानी से इंतजाम किया। उसके काम का प्रभाव उस शहर पनाह के जो काम करने में तेज थे, उनके काम को सराहा और आलसियों को काम करने के लिए उभारा। अपने शत्रु पर भी उसने गिद्ध की नजर रखी थी कि वो क्या कर रहा है, जो कि कई बार अपनी सेना को इकट्ठी कर उनसे वार्तालाप कर रहा था, जैसे कि कोई षड्यंत्र रच रहा। और वो कारीगरों के पास आया, कोशिश की कि उनका ध्यान काम से हट जाए और पिछड़ जाए, जबकि सारे कारीगरों की आंखें नहिम्या पर लगी थीं कि वो जहां इशारा कर उसके अनुसार काम करें। वही नहिम्या अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाकर हृदय से प्रार्थना कर रहा था उस स्वर्ग के परमेश्वर से, जो सब पर अपनी नजर रखता है तथा जिसने नहिम्या को ये काम पूरा करने की बात उससे कही थी। और जैसे उसके भरोसे और साहस से उसका हृदय ताकतवर बना, नहिम्या ने दोहराया और उसके शब्द शब्द दोहराए गए और गूंज गए, और कामगारों के मनों को भी उत्साहित किया, ये कहकर कि स्वर्ग का परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। नहमिया और उसके साथी कठिन परिश्रम से डरे नहीं, ना ही उन्होंने इस थकने वाले काम के लिए कोई बहाना बनाया। क्या दिन रात और यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी, ना तो वे सोए, ना अपने वस्त्र बदले और ना ही अपने हथियार अपने से दूर किए। ना तो मैंने मेरे भाइयों ने, ना मेरे नौकरों और ना ही काम की चौकसी करने वाले संरक्षक जो मेरी बात मानते हैं, हम में से किसी ने भी अपने वस्त्र नहीं बदले कि उन्हें धोने में हमारे काम करने का समय कम ना हो जाए। हर एक धार्मिक आंदोलन को निष्फल करना। इज़राइल के शासक और प्रधान अधिकारियों का एक बड़ा भाग इस महान कार्य को करने के लिए आगे आए, किंतु वहां कुछ तकोवाई प्रधान भी आ गए, जिन्होंने परमेश्वर की किताब में लिखे ईमानदार सेवकों के नाम परमेश्वर की किताब में लिखे गए हैं, और उन आलसी सेवकों का काम भी लज्जा के रूप में लिखा गया, और आने वाली पीढ़ी को इसकी चुनौती दी गई। हर एक धार्मिक आंदोलन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीधे ये तो नहीं कहते कि ये प्रभु का काम है, किंतु काम से आपको अलग रखते हैं, इनकार करते हुए कि इस काम की बढ़ोत्तरी में कुछ प्रयास नहीं करेंगे। किंतु जब ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत रुचि के काम होते, तब इनकी सक्रियता और जोश देखते ही बनता है। ये स्मरण रखना अच्छा है कि परमेश्वर के पास एक किताब में लेखा जोखा रखा जा रहा है, जिसमें हमारे सारे इरादे, विचार और कार्य लिए जा रहे हैं, वो किताब जिसमें कोई गलती, कोई भूल नहीं होगी। उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। उसमें हमारे द्वारा गवाए गए उस हर एक अवसर के बारे में बाकायदा लिखा गया होगा, जब हमने प्रभु का काम करने से इनकार किया, साथ ही वो हर एक भरोसा, प्रेम, नम्रता से किए गए कार्य हमेशा के लिए स्मरण किए जाएंगे। आधुनिक नहमियाहू की बुलाहट। कलीसिया को आज नहमियाहू की जरूरत है, न केवल वे जो प्रार्थना और प्रचार कर सकते, किंतु वे जो प्रार्थना और प्रचार के साथ सुदृढ़ हों, उद्देश्य को अपनाएं। इस नहमिया इब्री भक्त की योजना के बनाने से लेकर पूरा करने तक में किए गए परिश्रम को क्या प्रभु के सेवक और अगुवे सभी को उसका उदाहरण अपनाना नहीं चाहिए? जब वे कोई योजना बनाते हैं, तब से लेकर कार्य योजना के पूरे होने तक उन्हें इस प्रकार काम करना चाहिए, जिससे कलीसिया के लोग प्रभावित हों और काम में रुचि दिखाए और सहयोग प्रदान करें, लोगों को योजना के बारे में समझाए ताकि वे काम में मदद करें और काम की प्रगति में व्यक्तिगत रुचि दिखाए। नहमिया की सफलता को देखते हुए पता चलता है कि प्रार्थना, भरोसा और ज्ञान जोशीले प्रयास से पूरे होंगे। जीवित भरोसा ही जोशीले कामों को करने में मदद करेगा। एक अगुवे के द्वारा दर्शाई गई हिम्मत लोगों को काफी हद तक प्रभावित करती है। यदि सभी अगुवे केवल सत्य की महत्ता और उसकी पवित्रता को लेकर बैठे जाएं, जो आज जगत के लोगों को जांचने का मुख्य मुद्दा होगा, और यदि लोगों को जोश के साथ तैयारी करने के लिए काम न करें ताकि न्याय के दिन वे परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें, तो फिर कलीसिया केवल एक लापरवाह, आलसी और जीवन के सुख भोगने वाले समूह से ज्यादा कुछ नहीं कहलाएगी।